Welcome to the first episode of Podcast. It's a podcast focused on esports and gaming in India. Our guest today is professionally known as Endeavor, and his name is Cable. He is a professional player who has played sports like PUBG, CSGO, and Dota 2, and he has represented India in various tournaments internationally. I hope you enjoy the podcast coming up ahead, and I catch you guys later.
Bootcamps तो मतलब और होती है तो वो bootcamp provide करती है और कोई कोई ऐसे भी teams हैं जो लोग without और जो sponsorship के खुद ही bootcamp बना रखे हैं मतलब पांच लोग ऐसे मिलके bootcamp बनाते हैं खुद ही पूरा खर्चा वगैरह करके खुद ही रह लेते हैं और bootcamp का concept ये होता है कि पांच लोग साथ में मिलके खेलते हैं रहते हैं तो उससे उनका coordination वगैरह बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि रह रहे के मतलब उनको फुल टाइम पता रहता है कि इस बंदे का एटीट्यूड कैसा है गेम की तरफ और इसका मतलब नॉर्मल गेम स्टाइल कैसा है कि एग्रेसिव प्लेयर है या लर्कर ही है तो मतलब समझ रहा है ना कि ऑनलाइन खेल के उतना ज्यादा तू ये नहीं कर उसका एक्चुअल मतलब बिहेवियर कैसा है बंदे का वो बंदे के बिहेवियर के हिसाब से वो बंदा इन गेम प्ले स्टाइल रहता है उसका तो बूट कैंप वो है मतलब वो एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेशन हेल्प बढ़ाने के लिए हेल्प होती है तो इसलिए मोस्ट ऑफ द और बूट कैंप इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोग अच्छे से कम्युनिकेट वगैरह करके रहे और वो लोग कोचेस इसलिए लेके आते हैं क्योंकि अगर कोई प्लेयर हम लोग समझे कि पबजी खेल रहे थे तो हम लोग चार लोग खेलते थे तो एक बंदा IGL करता था और दो या एक बंदा एंट्री फ्रैगर होता था और बाकी के दो लोग सपोर्ट्स होते थे जैसे कि एंट्री फ्रैगर अंदर रश करता और जो सपोर्ट्स होता है तो अगर एंट्री फ्रैगर रश करता तो उसको बूजी मालूम नहीं होती कौन से मतलब प्लेयर्स है एनिमी टीम्स वगैरह कहाँ पे है तो एंट्री फ्रैगर अंदर घुस के इंस्टेंट फाइट लेता तो उसको ट्रेड लेने के लिए मतलब अगर सामने वाला एनिमी अपने टीममेट को मार रहा है तो इंस्टेंटली उसको बैकअप देने के लिए जो सपोर्ट्स होते हैं वो आ जाता है वैसा लेकिन फिर कोच वो होता है कि मतलब बाकी चीज मतलब चार प्लेयर्स होते हैं वो सिर्फ अपना खुद का गेम देखता रहता है मतलब मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा वैसा और कोच का क्या होता है कि कोच खेलता नहीं है मतलब यूजुअली कोचेस कोई भी होता है ना वो लोग गेम में उतने ज्यादा अच्छे नहीं होंगे लेकिन वो लोग जैसे कॉल्स देता है कि मतलब तुम्हें ये करना चाहिए ये टाइम पे ये करना चाहिए वगैरह वगैरह तो वो लोग का वो काम होता है तो वो सारे गेम्स पूरे देखता है और सारे प्लेयर्स को समझा दे कि मतलब तेरी क्या मिस्टेक चल रही है तेरी क्या मिस्टेक चल रही है क्योंकि यूजुअली प्लेयर्स क्या करते हैं अगर मैं IGL है तो मैं इन गेम कॉल्स वगैरह देता हूँ लेकिन अगर मैंने तेरे को बोला कि अरे तू ये जो कर रहा है वो तू गलत कर रहा है तो प्लेयर क्या करेगा हाँ तू भी ये कॉल दिया तूने ये किया इसकी वजह से हम मर गए वगैरह वगैरह तो यूजुअली कोच इस चीज के लिए होते हैं कि मतलब प्लेयर्स एक दूसरे में फाइट ना करें और जो भी है वो कोचेस का सुन के ले क्योंकि कोचेस खुद खेल नहीं रहे तो कोचेस बस देख रहे कि मतलब ये बंदे के क्या मेंटली कैसे खेल रहा है वो बंदा, ये बंदा कैसे खेल रहा है वगैरह वगैरह। तो वो था। और ऑर्गेनाइजेशंस होता है तो पबजी में ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम थे क्योंकि पबजी के टूर्नामेंट्स इतने ज्यादा होते नहीं थे। पबजी पीसी में, पबजी मोबाइल ऑन द अदर हैंड बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते थे। इंडिया में ही कुछ 15 करोड़ वगैरह के टूर्नामेंट्स हुए थे और
अच्छा
इंडिया को स्लॉट भी मिलता था इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए। पबजी पीसी का जो ग्लोबल्स होता था तो वो लोग साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इंडिया को कंसिडर ही नहीं करता था कि
अच्छा
हाँ क्वालिफायर्स लेते ही नहीं थे कभी भी इंडिया के। तो हम लोग भी जब थाईलैंड में एचपी वुमेन का टूर्नामेंट था तो एससीए का ही था वो टूर्नामेंट, तो इसलिए वो टूर्नामेंट ने इंडिया को कंसिडर किया था और हमें वो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था और हम लोग कभी इंडिया के बाहर तो खेले नहीं थे। और हम
अच्छा
लोग फिर इंडियन टूर्नामेंट्स कैसे होते थे और वो टाइम पे ना कस्टम लॉबीज भी होते नहीं थे तो हम लोग सिर्फ पब्स में खेलते थे रैंडम लोगों के साथ। तो हमें एक्चुअल टूर्नामेंट के जो सेटिंग्स होते हैं उसमें खेलने नहीं मिला, ना हम लोग एक्चुअल प्लेयर्स कैसे खेलते हैं उसमें खेलने नहीं मिला। पब्स में जैसे भी रैंडम कोई भी बंदा खेलता रहता है उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और जब हम एक्चुअल लैन इवेंट में खेलने गए थे थाईलैंड में तब हम लोग को पता चला कि वो सारे टीम्स जो वहाँ पे थी, मतलब 20 टीम्स को इनवाइट किया था, 20 में से 15 to 16 टीम्स थी वो लोग एक दूसरे में रोज प्रैक्टिस करते थे, रोज उनके स्क्रिम्स होते थे कस्टम्स।
अच्छा
और इंडियन टीम्स थी, जापनीज टीम्स थी और एक कोरियन टीम थी, जापनीज दो टीम्स थे शायद। हाँ तो हम चारों को उनमें से कुछ आइडिया नहीं था। हम लोग वहाँ पे पक्स जैसे खेल रहे थे नॉर्मल, घुसो इधर मारो उधर मारो, और हम चारों टीम्स बॉटम फोर में थे।
ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं था और कोच नहीं था इसलिए ना।
हाँ हम लोग मतलब वो टाइम पे पबजी पीसी का तो कुछ था ही नहीं, हम लोग बस ऐसे ही रैंडम फोर फ्रेंड्स ऐसे ही मिले थे गेम में खेल खेल के। तो हम लोग बोला रहे चलो टूर्नामेंट आ रही है टीम बना लो खेल लो, और वैसे करके हम गए थे वहां पे। और वहां पता चला कि वो सारे और के टीम्स थे सारे एकदम वेल स्पॉन्सर्ड टीम्स थे, सब रेड बुल एसर वगैरह का स्पॉन्सरशिप वाले थे, उनके पास उनके खुद के जर्सीज वगैरह थे, हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे वहां पे। तब जाके एक्चुअल पता चला कि पबजी लैंड इवेंट कैसा होता है और इंटरनेशनल लैंड इवेंट में खेल के बहुत एक्सपीरियंस मिला। और तब हम लोग को पता चला, और वो टाइम पे फिर वो लोग ने इंडियन टीम्स को भी मतलब वो इंडियन लोगों को कस्टम बनाने का फीचर दिया, और फिर बाद में वो लोग ने सब लोग को ही कस्टम बनाने का फीचर दे दिया।
अच्छा
और
तो तुम लोग पूरा सेल्फ स्पॉन्सर करके गए थे
नहीं, वो पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज
टूर्नामेंट?
स्पॉन्सर कर रहा था, फर्स्ट टू टीम्स थे वो लोग को वहां पे इनवाइट किया था।
इक्विपमेंट वगैरह?
इक्विपमेंट्स हम लोग खुद के लेके गए थे, माउस कीबोर्ड हेडफोन्स, बाकी तो उनका ही रहता क्योंकि वो आदत होती है ना कीबोर्ड माउस की, तो वो लेके जाना पड़ता FPS गेम है इसलिए। ऑर्ग्स ऐसे ये करती है कि बहुत सारे टाइप्स के ऑर्ग्स होते हैं, स्पॉन्सर्ड ऑर्ग्स होते हैं और एक ऐसे ऑर्ग्स होते हैं जिनको ज्यादा स्पॉन्सरशिप होती भी नहीं है। तो मेरे को तीन अलग अलग ऑर्ग्स के ऑफर आते हैं। एक ऐसी टाइप की ऑर्ग्स थी जो 5K दे रही थी मंथली, बूट कैंप भी प्रोवाइड नहीं कर रही थी और टूर्नामेंट विनिंग्स के 30% भी कट ले रही थी, ठीक है। फिर एक ऐसी और थी जो बूट कैंप प्रोवाइड कर रही थी, बूट कैंप में खाना वगैरह सब उन्हीं का होता है, पीसी भी वो लोग ही दे रहे थे, इक्विपमेंट्स बस मतलब अगर माउस वगैरह लेके जाना है तो लेके जाओ वरना वो लोग तो प्रोवाइड करेंगे, और वो लोग 30% कट लेंगे और अराउंड 30 to 40 K सैलरी देंगे। वो हर एक प्लेयर को अलग अलग था बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। और एक ऐसी भी और थी जो इतनी ज़्यादा स्पॉन्सर्ड वेल स्पॉन्सर्ड थी कि वो लोग ना टूर्नामेंट का कुछ कट ले रहे थे, वो लोग बूट कैंप प्रोवाइड कर रहे थे और वो लोग ट्रैवलिंग भी प्रोवाइड कर रहे थे और सैलरी भी उनका 50K दे रहे थे, और वो लोग को कुछ नहीं चाहिए था, वो लोग को बस हम लोग उनकी जर्सी पहन के घूमे उनकी एडवर्टाइजमेंट हो गया वही चाहिए था।
तो उनको स्पॉन्सर्स वगैरह कैसे मिलते हैं? मतलब उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम तो स्पॉन्सर्स ही है ना?
हाँ तो वो जो फर्स्ट हम लोग की और थी ना जो मैंने बताया 5K वाला, तो उसको भी मतलब हम लोग एक दो लैंड टूर्नामेंट्स में वो और के नाम से खेले, तो वो लोग ने फिर हाइपर एक्स वगैरह को अप्रोच किया और हाइपर एक्स ने उन स्पॉन्सरशिप चालू करी। तो ऐसा होता है कि मतलब और स्टार्टिंग में सिर्फ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है और मतलब कुछ फाइनेंशियल हेल्प नहीं करता है, मतलब और सॉरी स्पॉन्सर्स ऑर्ग्स को, जैसे कि अगर हाइपर एक्स है तो हाइपर एक्स तुम लोग को सिर्फ वो हाइपर एक्स के इक्विपमेंट्स देंगे कि तुम लोग को अगर माउस चाहिए, हेडफोन चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, तो अर्ली डेज में मतलब अर्ली 3 to 4 months से वो लोग सिर्फ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, और अगर वो मतलब अच्छे से तुम लोग का रिलेशन होता गया फिर वो लोग फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, ऐसा होगा। तो जितने ज़्यादा स्पॉन्सर्ड होते हैं उतने ज़्यादा वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं और उतने ज़्यादा वो लोग और प्लेयर्स को ज़्यादा उतना प्रोवाइड कर सकता है।
पबजी क्यों चूज किया? क्योंकि बाकी सारे भी तो गेम्स होते हैं, डोटा वगैरह।
डोटा मतलब मैं मोबा गेम्स में इतना मैकेनिकली स्ट्रांग हूँ नहीं, और मेरे को बचपन से ही मैं FPS गेम्स ही खेलता था, मतलब कैफे में जब मैं छोटा था जब मेरे पास PC नहीं था तो मैं CS वगैरह खेलता रहता था कैफे में, फिर कैफे के वो छोटे छोटे वो कैफे वाले जो टूर्नामेंट्स होते हैं 3v3 वगैरह वो खेल खेल के फिर मेरे को और ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था FPS गेम्स। फिर PC मिलने के बाद भी मैं CS GO वगैरह ही खेलता रहता था मोस्टली। डोटा में सिर्फ टाइम पास के लिए खेलता रहता था कैजुअली फ्रेंड्स के साथ वगैरह, और वो टाइम पे मैं CS में प्रो जा रहा था, लेकिन फिर जब PUBG आया तो PUBG मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में PUBG का कुछ ज़्यादा ही मतलब ये चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा इजीली बूम हुआ था PUBG इंडिया में, और बस सब लोग PUBG खेलते रहते थे, और वो गेम एक्चुअली स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था और बहुत फन था, और मतलब टूर्नामेंट्स भी इजीली होते थे, तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए टूर्नामेंट खेला था, तो उसमें मैं 2-3 सोलो टूर्नामेंट में जीत गया था। फिर वहाँ पे टूर्नामेंट्स में मेरे को दूसरे फ्रेंड्स भी मिले जो मतलब एक्चुअली अच्छे खेलते थे, तो उनके साथ फिर ऐसे ही फिर जब टीम टूर्नामेंट्स आ गए मतलब स्क्वाड वाले, तो उनके साथ टीम अप करके हम लोग ने खेले और उसमें भी अच्छे से जीत रहे थे, तो हम लोग ने सोचा क्यों नहीं खेलते रहते। अभी वैसे PUBG का सीन डेड हो चुका है क्योंकि मतलब मोबाइल तो बैन है, मोबाइल और PC अलग ही है, लेकिन PC के टूर्नामेंट्स बहुत कम होते हैं अभी, और मतलब कंपेयर टू वैलोरेंट उसका प्राइस पूल और PUBG का प्राइस पूल में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि PUBG का सबसे बड़ी टूर्नामेंट साल में एक बार होती थी 10 लाख प्राइस पूल वाली, ठीक है, और वैलोरेंट की मंथली होते हैं 10 लाख प्राइस पूल वाले। इनफैक्ट वैलोरेंट ने अभी बहुत सारे मतलब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग 50-50 lakhs के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एवरी 4 months वैलोरेंट के लिए। तो और वैलोरेंट मतलब FPS गेम्स, और वो बहुत ही कम मतलब PC के कॉन्फ़िग लगते हैं, मतलब इतना ज़्यादा देर को हैवी PC भी नहीं लगता खेलने के लिए, तो उसका प्लेयर बेस बहुत ही ज़्यादा है, और वैलोरेंट ग्लोबल्स वाले बंदे मतलब जो एक्चुअल ग्लोबल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लोग भी इंडिया को कंसिडर कर रहे हैं इन ग्लोबल टूर्नामेंट्स, जो PUBG ने अभी तक नहीं करा हुआ, तो वैलोरेंट बहुत अच्छे से बूम हो रहा है। के प्लेयर्स की सैलरी मतलब अभी एक्सकाली ने जो सबको मतलब बताई दिया था, रिवील कर ही दिया था उसके यूट्यूब पे, तो उसको सैलरी मिलती है 2.5 lakhs पर मंथ और 10 lakhs साइनिंग बोनस था बंदे का, और टूर्नामेंट्स का प्राइस मनी अलग। तो वैलोरेंट में मतलब करियर बनाना बहुत ही अच्छा है, प्लस इंडियन सीन में मतलब घुसना मेरे को खुद को पर्सनली इजी लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन होता नहीं है, जैसे PUBG में भी इतना ज़्यादा कंपटीशन था नहीं FPS गेम्स के हिसाब से।
अगर किसी को कैजुअल गेमिंग से प्रोफेशनल गेमिंग जाना है मतलब, और या फिर ऐसा ई स्पोर्ट्स प्लेयर ही बनना है पूरा इंडिया में, तो उसके लिए कोई टिप्स बताओ, मतलब व्हाट शुड बी द पाथ।
ऐसा तो मतलब उसमें जो भी वो गेम खेल रहा है तो उसके अगर वो कैजुअली खेल रहा है तो उसको इतना ज़्यादा कुछ पता होगा नहीं, तो वो यूट्यूब पे गाइड वगैरह देख के खुद को इम्प्रूव करे, मतलब पहला इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इम्प्रूव करे, एक अच्छा सा रैंक पहुंच जाए, जैसे कि वैलो में डायमंड इमॉर्टल होता, वो रैंक में पहुंचने के बाद उसको ऑब्वियसली फ्रेंड्स मिल जाएंगे डायमंड इमॉर्टल के, उनके साथ खेल खेल के छोटे छोटे टूर्नामेंट्स जो बहुत सारे मतलब फ्री टू प्ले टूर्नामेंट्स ही होते हैं वैलो में, तो रजिस्टर करना भी बहुत ईजी होता है। और फेसबुक पे इंडियन ग्रुप्स भी बहुत है, मतलब इलीट वाले, तो इलीट वैलोरेंट होता है, इलीट डोटा होता है, इलीट इलीट पबजी होता है, वो सारे ग्रुप्स में अगर तुम लोग को ढूंढने जो दूसरे बंदे ग्राइंड करने वाले हैं तो वहाँ पे लोग यूजुअली पोस्ट डालते रहते हैं, और वहाँ पे वो लोग बहुत लोग टीम बना रखे हैं वहाँ पे कि मतलब मेरा रैंक ये है, इवन प्लैट और सिल्वर वाले प्लेयर्स भी होते हैं वो लोग भी डालते हैं कि मेरा अभी रैंक ये सिल्वर है, मैंने अभी 1 महीने पहले स्टार्ट किया, मुझे गेम सीखना है या मुझे और भी बंदे चाहिए जो सिल्वर है और जिनको साथ में सीखना हो, तो वो लोग साथ में सीख के टूर्नामेंट्स में ऐसे रजिस्टर कर लेते हैं, टीम्स के अगेंस्ट खेल के हार जाते हैं जीत जाते हैं स्टार्टिंग में, फिर वैसे वैसे कर करके थोड़े थोड़े सीखने लग जाते हैं, फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एक बार इम्प्रूव हो गया, तू एक बार डायमंड इमॉर्टल के रैंक का हो गया तो फिर तू खुद का गेम प्ले रिकॉर्ड करके तू वैसे ही पोस्ट कर सकता है यूट्यूब पे, या तो क्लिप्स डाल सकता है फेसबुक ग्रुप पे। फेसबुक ग्रुप पे ऑलमोस्ट सारे इंडियन प्रोज और के ओनर्स वगैरह रहते हैं, वो लोग सब देखते रहते हैं, वो लोग वहाँ से स्काउट करते हैं कि तू कैसा प्लेयर है क्या है, वैसे कर करके टूर्नामेंट्स भी वो लोग ऑलमोस्ट सारे देखते हैं। तुम लोग मतलब सारे गेम्स टूर्नामेंट की स्ट्रीम नहीं होते क्योंकि स्टार्टिंग में जो क्वालिफायर्स होते हैं, क्योंकि समझ ले 600-700 टीम्स रजिस्टर करती है, समझ रहा, तो वो लोग सारे भी टूर्नामेंट्स के मतलब गेम्स और मतलब स्ट्रीम नहीं कर सकते, तो जैसे ही मतलब टॉप 24 या टॉप 64 में आ जाता है तो वो लोग स्ट्रीम करना चालू करते हैं, तो अगर टॉप 64 टीम में पहुंच गया तो वहां पे अपना गेम प्ले दिखा के लोगों को ये कर सकता है कि मैं ये प्लेयर हूँ, तो मुझे अगर कोई और में इंटरेस्टेड हो या फिर किसी अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको अच्छे टीम बना के खेलना हो वगैरह, वैसे कर करके तुम लोग आगे आगे जा सकते हो, और खुद आ जाती है फिर।
बहुत ग्राइंड बहुत ज्यादा है ना, इट्स नॉट इजी।
हाँ इजी तो नहीं है, मतलब रोज तेरे को अगर FPS गेम है तो तेरे को रोज 30 मिनट्स तो एम ट्रेनिंग में डालना होता है तेरे को सारे, और एम पे ही नहीं होता सिर्फ, क्योंकि तू तेरा एम कितना भी अच्छा हो तो ऐसे रैंडमली 4 बंदों के बीच में घुस के मरता रहेगा, वो वाला सीन भी होता है। देखो गेम सेंस भी इम्प्रूव करना पड़ता है, मतलब कब पुश करना हो कब नहीं, तो तेरे को उसके लिए एक्चुअल टूर्नामेंट्स देखने पड़ते हैं, फिर टूर्नामेंट्स में भी लोग कैसे कैसे स्ट्रैट्स यूज करते हैं वो सीखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। देखो तेरा गेम सेंस और तेरा एम वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ता है, अगर तू नया है और FPS गेम्स में नया है तो उसमें तो प्रैक्टिस करने बहुत ही टाइम लगता है। अगर FPS गेम्स तू पहले से खेल रखा है तो एम इम्प्रूव करना इजी है, लेकिन फिर गेम सेंस अगर तू वैलो के लिए नया है तो गेम सेंस इम्प्रूव करना थोड़ा हार्ड है, लेकिन वो भी मतलब 7 to 8 months अगर तू लगातार अच्छे अच्छे प्लेयर्स को देख रहा है, स्ट्रीमर्स है मतलब प्रो प्लेयर्स है जो स्ट्रीम करते हैं, तो उनको देख देख के तू अपना गेम सेंस इम्प्रूव कर सकता है कि वो लोग कौन से टाइम पे क्या करते हैं, कब पुश करते हैं कब नहीं करते, कब लर्क करते हैं, क्योंकि तू हर बार सेम ही चीज़ नहीं कर सकता, तो कर करके गेम सेंस इम्प्रूव होता है। और एम प्रैक्टिस तो तू फ्री के एम लैब आता है वो, या फिर कोवैक्स है जो पेड स्ट्रीम है वो एम इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है, वो रोज रोज खेल खेल के ग्राइंड करना। और टैलेंट भी होता है कोई के लोग ऐसी, जैसे कि श्राउड है उसको कोई भी FPS गेम दे तो वो सीधा उठा के हेडशॉट्स मारने लग जाता है।
बजट इक्विपमेंट में प्रोफेशनल जाना अभी आसान हो गया ना।
हाँ अभी बहुत सारे इक्विपमेंट सस्ते में मिल जाते हैं, मतलब अच्छे ही होता है।
पर इन्वेस्टमेंट तो है, मतलब टाइम और उसका
टाइम
टाइम और
का।
पैसे का भी।
हाँ पैसे का एज इन मतलब अगर तू पढ़ा है जैसे कि 18 20 प्लस है तू, और वो टाइम पे अगर तू जॉब कर सकता है, लेकिन तू अगर वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि कोई बंदा है जो जॉब की एज का है और अगर वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है इसमें, तो वो जॉब करके उसका एटलीस्ट जॉब से वो कुछ कमाता होता, प्लस जॉब से इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वगैरह मिलता है अच्छा जॉब करने के लिए, तो वो सारा चीज वो ई स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है।
Do you think it's worth it? अगर मतलब
अगर क्योंकि मेरे CS:GO के टाइम्स के ऐसे भी दोस्त हैं जब मतलब मैं 15 इयर्स का था और वो लोग वो टाइम पे 23 वगैरह इयर्स के थे, और वो लोग मेरे को समझा सिखाते थे कैसे खेलना वगैरह, तो वो लोग वो टाइम पे ई-स्पोर्ट्स इतना ज्यादा था नहीं, मतलब CS:GO पे टूर्नामेंट्स वगैरह वो उतने ज्यादा होते ही नहीं थे, तो इवन दो वो लोग बहुत अच्छे खेलते भी थे, वो लोग को कभी उतना वैसे स्कोप मिला नहीं जितना अभी है चालू, और इसलिए तो वो लोग ने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था गेम में, वो टाइम पे उनको मिलता नहीं था, और अभी बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन फिर भी सारे लोग खेल नहीं पाते, जैसे कि बहुत मतलब प्लेयर्स खेलने वाले हैं लेकिन उतने ज्यादा, मतलब बहुत सारे लोग इमॉर्टल है लेकिन सब लोग को कोई टीम में लेता नहीं, समझ रहा है? तो अगर वो टाइप के प्लेयर्स भी होता है कि मतलब जो लोग कभी की बहुत मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन वो कुछ लक पे भी होता है एक तो, और स्किल्स पे भी होता है, तो वैसे भी प्लेयर्स होते हैं जो लोग मतलब फुल टाइम इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वो इम्प्रूव ही नहीं हो पाता है कैसे भी करके, तो वही है, अगर तू हो गया तो तू वर्थ है बहुत, क्योंकि किसको नहीं पसंद है गेम खेल करके पैसे कमाना जो दिन भर करते रहते हैं, लोग बेचारे जॉब से आते हैं फिर खेलने लग जाते हैं, को बस फुल टाइम खेलना है, और एक बार तूने इजीली खेल खेल के तेरे ऑडियंस वगैरह बन गई, तो अगर बाद में तू रिटायर हो के बस तेरे को स्ट्रीम करना है, बाकी के गेम्स खेलना है कैजुअली, वो भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस वगैरह बहुत मिलता है, क्योंकि जब मैंने खुद पबजी की मैं जब खुद टीम बना रहा था अकेला, मतलब पूरे लोगों को प्लेयर्स ढूंढ ढूंढ के, तो वो बहुत माइंड फक था, बहुत स्ट्रेस मिलता है, सब हर एक को समझाना पड़ता है कि तेरा रोल क्या है, तेरे को क्या करना है, वैसा वैसा, तो पहले मैंने 2-3 प्लेयर्स ऐसे ढूंढे थे जो लोग मतलब खेलते अच्छे थे लेकिन उनको उनके रोल्स ही नहीं समझते थे कि तुझे ये नहीं करना है, अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो तुझे मेरे साथ पुश नहीं करना है, तेरे को बस देखना कि कोई विंडो पुश कर रहा है कि नहीं, मेरे साथ पुश नहीं करना है, तो वो सब समझाने में बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था,